पेज नंबर 209। उनके कथन में रहस्य कहीं नहीं है, जो है सब स्पष्ट है। हाँ, यदि कहीं कहीं गुह्य शब्दावली दिखाई पड़ती है तो उसे उनकी अनिर्वचनीयता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में ही समझना चाहिए। कुछ पारिभाषिक शब्द प्रायः सभी लोगों के तकिया कलाम बन जाते हैं। सिद्धों के साथ भी यह कमजोरी लगी रही। कभी कभी अपने परम महासुख की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए जब सरह कहते हैं कि जहां मन पवन का संचार न हो, जहां रवि शशि का प्रवेश न हो, अथवा जब वे गगनगिरी की नदी में जल पीने की चर्चा करते हैं, तो इनके द्वारा असीम और अलौकिक की ओर अस्पष्ट रूप से संकेत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर इनके कहने में एक शक्ति है, प्रहार में निर्भीकता है, भावों में सीधे दिल को छूने की ताकत है और भाषा में अनगढ़ सौंदर्य है। श्रृंगार और शौर्य का रोमांस, काव्य हेमचंद्र प्राकृत, व्याकरण के दोहे। अपभ्रंश में जैन पंडितों, मुनियों और बौद्ध सिद्धों के धार्मिक साहित्य के बीच ऐहिक जीवन को लेकर लिखी हुई वीर और श्रृंगार की ललित रचनाएं भी मिलती हैं। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित रचनाओं का अधिकांश ऐसा ही है। कहा नहीं जा सकता कि हेमचंद्र ने यह मधुर मधुचक्र किन किन काव्य ग्रंथों से तैयार किया है। इनके रचयिता कवियों का नाम अज्ञात है। हेमचंद्र के व्याकरण में जो नीति अन्युक्ति अथवा धर्म संबंधी रचनाएं हैं, उनमें से कुछ का आदि स्रोत तो जैन काव्य ग्रंथों में मिल गया है, लेकिन शौर्य और श्रृंगार के ऐसे बहुत से दोहे हैं जिनका आदि स्रोत अभी तक अज्ञात है। चाहे इनके रचयिता जैन कवि हों अथवा जैनेतर लोक कवि, इतना निश्चित है कि संपूर्ण अपभ्रंश साहित्य में इनका सौंदर्य सबसे अलग है। जैन मुनियों की आचार प्रधान सूक्तियों के बीच उत्साह और दर्प से भरे हुए उस काव्य को देखकर साफ मालूम होता है कि वह आभीर, गोप, गुर्जर आदि युद्धप्रिय जातियों का उन्मुक्त हृदयोद्गार हैं। युद्धों का वर्णन तो अपभ्रंश के अनेक चरित काव्यों और पुराणों में भी मिलता है, लेकिन उनमें हाथियों की चिंगार, घोड़ों के टाप की आवाज और शस्त्रों के नाम की लंबी सूची ही अधिक मिलती है। सच्चे वीर हृदय का उत्साह वहां कहां। यदि ऐसा शौर्य देखना हो तो हेम व्याकरण के इन उदाहरणों को देखें। यहां पुरुष का पौरुष ही नहीं, उसके पार्श्व में वीर रमणी का दर्प भरा प्रोत्साहन भी मिलेगा। यदि एक ओर शिव का तांडव है तो दूसरी ओर उनके पार्श्व में शक्ति का लास्य भी है। कहाँ हैं ऐसी औरतें जिन्हें युद्ध के बिना उदास लगता है। औरतें तो सामान्यतः मनाया करती हैं कि किसी तरह प्रिय लड़ाई बिड़ाई के कामों से छुट्टी पाकर आए तो उसे अंचल तले ढक कर रखें और सुख शांतिपूर्वक कुछ दिन बिताएं। लेकिन यहाँ प्रिया कहती है, खग विसाहियु जही लहूं, पिया तही देस ही जाहूं। रण दुब्भिखे भगाए, विनु जुगझे नम बलाहूं। पेज नंबर 210। प्रिय, ये किस देश में आ गए? जब से यहाँ आए युद्ध का अकाल पड़ा हुआ है, और किसी ऐसे देश में चलो जहाँ खड्ग का व्यवसाय होता हो। हम तो युद्ध के बिना दुबले हो गए और अब बिना युद्ध के स्वस्थ न होंगे। लेकिन इस वणिक सभ्यता के शस्त्र व्यवसायी कहीं ऐसा न समझ लें कि यह तलवार बेचने वाले दंपति की बात चीत है। औरतें गौरा पार्वती से न जाने क्या क्या वरदान मांगती हैं। अक्सर तो बेटी बेटा ही मांगती हैं, और यदि बेटी बेटा है तो धन मांगती हैं, और यदि धन भी हुआ तो अचल सुहाग मांगती हैं। लेकिन इस काव्य लोक की यह नारी अद्भुत है। मांगती क्या है कि आयही जम मही अन्नही अन्नही वी गोरी सु दिजही कंतु गए मत्तह चतनकु सहम जो अभिरई हसंतु। और वह घर बैठे बैठे वरदान ही नहीं मांगा करती, स्वयं भी लड़ाई के मैदान में जाकर पति को समय समय पर परामर्श देती रहती है। देखती है कि पति तलवार से भट्टों का सिर भग्न करता चला जा रहा है। उसे सहसा बेचारे कापालिकों की याद आ जाती है कि वे अभग्न कपाल के अभाव में आज साधना कैसे करेंगे। इसलिए झट कहती है प्रिय, एम वही करे सलजू करी, छद ही तुहु करवालू। जम कापालिया बपपुडा लेही अभगु कवालू उधर पति देव कैसे हैं? युद्ध में लड़ते लड़ते पांवों में अपनी अंतड़ियां उलझ गई हैं, सिर कंधे पर झूल गया है, फिर भी हाथ तलवार से नहीं हटा है। पाए विलगी अंतड़ी सिरु लहसियु खंसु, तोवी कटारी हथडऊ बली किज्जु कंसु। इतना ही नहीं, कभी कभी उनका दान इस सीमा तक पहुंच जाता है कि घर सब कुछ देते देते केवल प्रिया बच रहती है, और युद्ध में तो अपने आप को भी लुटा देते हैं, केवल तलवार बच रहती है। कितनी समानता है। इधर तलवार बची और उधर उससे भी पैनी प्रिया, केवल उन दोनों का सहारा हाथ चला गया। और इतने बड़े सत्य को नायक स्वयं नहीं कहता, कहती है उसकी वही प्रिया। देतहो हूँ परी उव्वर्य जुझतहो करवालू। नायिका कहती है कि मेरे कंत के दो दोष हैं। सच यहाँ ऐसे ऐसे स्वामीभक्त भट दिखाई पड़ते हैं कि युद्ध के मैदान में स्वामी कार्य के लिए कौन पहले जूझे, इसी होड़ में आपस में ही जूझ मरते हैं, स्वामी का काम धरा रह जाता है। कवि कहता है कि ऐसे उत्साही भट्टों को बीड़ा देना भी बेकार। पेज नंबर 211 तेमुगा हराविया जे परिविठा ताह अवरोप्रु जोनताह सामित गंजक जाह। इस काव्य जगत में उत्साह का भाव केवल रण क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, जीवन के अन्य क्षेत्रों में चलने वाले संघर्ष में भी उसी प्रकार की प्रेरणा दी जाती है। किसान जीवन भर अपनी छीनी गई जमीन को फिर से पाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन नहीं ले सका। अंत में जब उसने अपने लड़के को सयाना होते देखा और यह भी देखा कि वह उस भूमि के लिए प्रतिकार नहीं करता, तो मरते मरते धिक्कारता गया। पुरते जाए कवनु गुनु अवगुनु कवनु मुएनु, जा बप्पी की भूनी चंपेजड़ अवरेन। ऐसे ही शूरवीर उत्साही और कर्मठ नर नारियों का प्रेम भी उस मुक्तक माला में व्यक्त हुआ है। सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि ऐसे स्वस्थ तन और स्वस्थ मन वालों का स्नेह कैसा हो सकता है। पलंग पर पड़े पड़े विरह में कराहने वाले नागर जनों को ये प्रेम नहीं है, और नहीं है दिन दहाड़े घर में घात लगाए बैठे रहने वाले छैलों का ये रति रंग। यहाँ वरही तत नायिका के ऊपर गुलाब जल और इत्र की शीशी नहीं खाली की जाती। इस काव्य लोक की नायिकाएं भी आभूषणों और वस्त्रों की दुकान नहीं हैं। नायिका के वेश विन्यास का तो ये हाल है कि सिरी जरी अखंडी लोरी गली मनेड़ा ना बीस, फिर भी उसके रूप गुण का जादू तो देखिए कि तो वी गोठड़ा करावया मुधहे उटूट बईस। इस सीधे सादे निर्धन लोक जीवन का सौंदर्य ही ऐसा है कि इसके गोठ में अपने को बहुत लगाने वाले जवान रसिकों को भी उठक बैठक करनी पड़ती है। कौन कहे यह कविता भी ऐसी ही है जिसमें न झीना आवरण है न अलंकृत आभरण, फिर भी इसने बड़े बड़े अलंकारवादी पंडितों को अपने जादू से ऊठ बईस करा दिया। नायिका अभी अच्छी तरह वयस्क नहीं हुई है, शरीर पर जो कुछ है सब तुच्छ ही है, मध्य भाग तुच्छ है और रोमावली तुच्छ है, इस पर से तुच्छ हास और तुच्छ जल्पना, लेकिन इसके बाद जो सबसे तुच्छ वस्तु है वह तो कहने में भी नहीं आ सकती। कटरी थनंतरु मुद्ध है जे मनु विची न माए, स्तनों के बीच के दूरी की कमी तो बहुत जगह देखी गई, लेकिन ये जगह इतनी कम होगी कि उसमें नायक का मन भी न समाएगा। ये तो यहीं सुना और इसी मुग्धा के यहाँ देखा। पेज नंबर 212। धीरे धीरे ये स्तन इतने उत्तुंग हो जाते हैं कि नायिका उनसे परेशान हो उठती है, क्योंकि अब उनसे लाभ की जगह हानि होने लगी है, उनके कारण प्रिय उसके अधरों तक पहुँच नहीं पाता। बेचारी इतनी भोली है कि प्रिय के अधरों को तो दोष दे नहीं सकती कि वे गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही क्यों विरम जाते हैं, इसलिए वह अपने ही अंगों पर खींच प्रकट करती है। ऐ तुंगतनु जम थनहा सो छेउ न हुलाहु। सही जड़ केमवई तुदी विसेन अहरी पहुंचई नाहू ऐसी ही नायिका विषय की गांठ होती है, लेकिन मामूली विष की गांठ नहीं। नवखी कवि विस गठी। इसका नोखापन ये है कि भडू पतचलियो सो मरी जासुन लगुर कंठी। यह नोखापन शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, इसका प्रसार हृदय के विविध व्यापारों तक दिखाई पड़ता है। नायिका का प्रिय दोषी है, ये बात वह न जाने कितने मुंह से सुन चुकी है, और उन युक्तियों के विरुद्ध उसके पास कुछ भी तर्क नहीं है। वह अपने मन से लाचार है। जब एक सखी फिर कहने आती है तो नायिका उससे नम्रता के साथ कहती है, भन सही निहुअम तेवम माई जई पियुदित सदोसु। जेव न जानी मजझू मनु पत खावडियन तासु। जब प्रिय सदोष है तो ऐसी बात एकांत में कहो, लेकिन ऐसे एकांत में कि मेरा मन भी न जाने पाए, क्योंकि वह तो प्रिय का पक्षपाती है। भला ऐसी नायिका को एकांत कहाँ। पुरुष युगों से स्वेच्छाचारी होते ही आए हैं, कहीं के कहीं रम गए, लेकिन नारी उसे कैसे छोड़ दे। आग से घर जलता जरूर है, फिर भी उससे काम लेना कोई कैसे छोड़ दे। विपिया आरव जैवी पियु तोवी तम आन्ही अजजू। अग्गिन दद्धा जैवी धरु तो ते अग्नि कजजू। प्रिय की अनुपस्थिति में नायिका मन ही मन नाना प्रकार के संकल्प करती है। इस बार उसने ऐसी क्रीड़ा करने का इरादा किया जैसी कभी नहीं की थी। क्रीड़ा यही की जिस तरह मिट्टी के नए बर्तन में रखते ही पानी उसके कण कण में भिग जाता है, उसी तरह मैं उसके सर्वांग में प्रवेश कर जाऊंगी। जई केवी पावीसु पियु अकिया कुड्डू करीजु। पानीयु नवई सरावी जिव सव्यंगे पैसीजु। वह मन ही मन संकल्प करती है कि प्रिय आएगा, मैं रूधूंगी और मुझ रूठी हुई को वह मनाएगा। लेकिन उसकी सारी रातें ऐसे ही मनोरथों में नित्य बीत जाती हैं। आखिर प्रिय आता है तो सारे मनोरथ ताक पर धरे रह जाते हैं। पेज नंबर 213। अम्ये सत्थावत्थे ही सुधी चितिंजी मानू प्रिय दित हल्लोहेन को चेई अपान। लेकिन पहले वह मिले तो सही, मन किस तरह धोखा दे गया। मान वह करे जिसकी अवस्था स्वस्थ हो, यहाँ तो प्रिय को देखते ही हड़बड़ी में अपाना ही बिस जाता है। इसी तरह प्रणयी जीवन के इन दोहों में वह सादगी सरलता और ताजगी हैं जो हिंदी के समूचे रीति काव्य में भी मुश्किल से मिलेगी। कला वहाँ जरूर है, चातुरी वहाँ खूब है, एक एक शब्द में अधिक से अधिक चमत्कृत करने की शक्ति भी हो सकती है। मतलब ये कि वहाँ गागर में सागर भरने की करामात हो सकती है, लेकिन गागर में गागर जितना ही अमृत भरने की जो चेष्टा यहाँ है, उस पर रीझने वाले सुजान भी कम नहीं है। कठिन काम गागर में सागर भरना हो सकता है, लेकिन गागर में अपना हृदय भर देना कहीं अधिक कठिन है। हेम व्याकरण के इन दोहों के गागर ऐसी ही है। आर्या और गाहा सत्सई की तरह इस दोहावली के भी एक एक दोहे पर दर्जनों प्रबंध काव्य निछावर किए जा सकते हैं। मुंज के दोहे ऐसे ही मनोहर मुक्त प्रबंध चिंतामणि में संकलित मुंज के अपभ्रंश दोहे हैं। पता नहीं ये दोहे मुंज के जीवन पर लिखे हुए किसी प्रबंध काव्य के कुछ अवशिष्ट मणि हैं, अथवा मुक्त रूप में ही लोक परंपरा में चल पड़े थे, फिर भी एक एक दोहे में पूरे प्रसंग का मार्मिक निष्कर्ष भरा पड़ा है। मुंज की कहानी अपने आप में इतनी काव्यात्मक है कि सीधे सादे दोहे भी प्रसंग गर्भत्व के कारण हृदय पर सीधे चोट करते हैं। तैलप्राज की कैद में पड़ा हुआ मुंज अपने किए पर झंख रहा है। एक तो उसने अपने मंत्री रुद्रादित्य मेहता के मना करने पर गोदावरी पार कर तैल्प पर चढ़ाई की और अपने उस शुभचिंतक मंत्री को खो दिया। दूसरे यहाँ आने पर तैल्प भगिनी मृणालवती पर विश्वास करके भाग निकलने की बनी बनाई योजना उससे और इस तरह अपनी जान ही नहीं अपने साथियों की भी जान खतरे में डाली। इतनी भूलों का फल उसे भोगना पड़ा और वह भी इस रूप में कि उसे रस्सी में बांध कर घर घर भीख मंगवाई गई। मुंज के दोहों में उसके इन्हीं अनुभवों की पीड़ा है। दो एक दोहे बानगी के लिए कह झोली तुटवी की व मुह की हुआ ना छारह पुंज हंडी दोरी दोरियऊ जिम मंकडू तिम मुंज गए गए रह गए तुर गए पाए कड़ानी भिज सगठिया करी मतिन्नु मेहता रुदायच संदेश रास्क। ऐसे ही बिखरे हुए मुक्तकों को कथा के महीन सूत्र में पिरोकर अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी ईस्वी ने संदेश रास्क नामक सुंदर गीत हार रचा है। ये तीन पेज नंबर 214 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों की छोटी सी रचना है। प्रथम प्रक्रम में मंगलाचरण कवि का व्यक्तिगत परिचय ग्रंथ रचना का उद्देश्य तथा कुछ आत्मनिवेदन है। इस तरह कवि ने आरंभ में 23 छंदों में भूमिका बांधने के बाद दूसरे प्रक्रम से मूल ग्रंथ आरंभ किया है। कथा सूत्र इतना ही है कि विजयनगर की एक प्रोषित पतिका अपने प्रिय के वियोग में रोती हुई एक दिन राजमार्ग से जाते एक बटोही को देखती है और दौड़कर उसे रोकती है। पथिक को रोककर वह पूछती है कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे। पथिक बतलाता है कि मैं समीर से आ रहा हूँ और स्तंभ तीर्थ जा रहा हूँ। इसी सिलसिले में वह सामोर नगर के पेड़ पौधों और नागरिक जीवन का वर्णन करता है। स्तंभ तीर्थ का नाम सुनते ही नायिका भाव विह्वल हो उठती है और पथिक से निवेदन करती है कि अर्थ लोभ के कारण मेरा प्रिय मुझे छोड़कर वहां चला गया है, इसलिए कृपा करके उसके पास मेरा संदेश लेते जाओ। इस तरह वह थम थम कर धीरे धीरे अपनी विरह व्यथा कहती जाती है। पथिक बीच बीच में जाने की जल्दी मचाता है, फिर भी नायिका के रुदन पर रुक जाता जाता है और कुछ बातें और सुन लेता है। अंत में वह पूछता है कि तुम्हारा पति किस ऋतु में तुमसे अलग हुआ। ये प्रश्न नायिका के मर्म को छू लेता है। उसे याद आता है कि वह ग्रीष्म ऋतु थी जब उसका प्रिय उसे छोड़कर परदेश गया। तब से साल भर हो गए। ये सब स्मरण आते ही वह क्रमशः छहों में अपनी दशा का वर्णन कर जाती है। काव्य का तीसरा प्रक्रम इसी षडितु वर्णन के लिए रचा गया प्रतीत होता है। पथिक को संदेश देकर नायिका ज्यों ही विदा करती है कि दक्षिण दिशा में उसका प्रिय आता हुआ दिखाई पड़ जाता है। ग्रंथ का अंत करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार उसका कार्य अचानक सिद्ध हो गया, उसी प्रकार इस काव्य को पढ़ने सुनने वालों का भी सिद्ध हो। जो अनादि और अनंत है उसकी जय हो। संदेश रास्क के कथा सूत्र से स्पष्ट है कवि को कथा से कोई विशेष मतलब नहीं है। उसे सामोर नगर के जीवन पेड़ पौधों तथा षडितु वर्णन के साथ मुख्यतः एक प्रोषित पतिका नायिका की विरह वेदना का वर्णन करना है। इन सभी वर्णनों को एक सूत्र में बांधने के लिए ही उसने पथिक की अवतारणा की है, अन्यथा छंद अपने आप में स्वतंत्र हैं और मुक्तक का सा रस उत्पन्न करते हैं। कालिदास के मेघदूत की भांति संदेश रास्क भी विभिन्न मुक्तकों की एक मणिमाला है। रास्क अथवा रास नाम से लिखे हुए काव्य ग्रंथ अपभ्रंश में तथा उसके बाद पुरानी राजस्थानी और हिंदी में भी मिलते हैं, लेकिन विषय को देखते संदेश रास्क उन सबसे भिन्न है। इससे मिलता जुलता केवल एक रास काव्य राजस्थानी में है, वीसलदेव रास। अन्यथा अन्य रास काव्य एक तरह से चरित काव्य हैं जिनमें किसी राजा के युद्ध और विवाह की कहानी वर्णित दिखाई पड़ती है। अपभ्रंश में संदेश रास्क अपने धन का अकेला काव्य भले हो, परंतु इसके पीछे इस तरह के काव्यों की परंपरा का आभास मिलता है, क्योंकि रास काव्य के पेज नंबर 215 जो लक्षण जो अपभ्रंश के आचार्यों ने दिए हैं उनमें से एक लक्षण संदेश रास्क पर भी लागू होता है। स्वयंभुव छंद में रास का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है। धता छद्दनिया ही पद्धडिया ही सु अनरुए ही रासाबंधो कवो जन मन अहिरामो होई अर्थात धता छद्दनिया पद्धडिया तथा ऐसे ही अन्य सुंदर छंदों से युक्त रासाबंध काव्य जन मन के लिए अभिराम होता है। इसके बाद ही 21 मात्रा वाले रासा छंद का लक्षण दिया गया, जिससे अनुमान होता है कि इसे भी रासा बंध काव्य का विशेष छंद माना गया है। यदि यह सच है तो संदेश रास उस लक्षण पर खरा उतरता है, क्योंकि इसमें जिस छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है वह रास छंद है। काव्य की दृष्टि से संदेश रास का अपभ्रंश साहित्य में विशेष स्थान है। इस विरह काव्य का आरंभ ही बड़े आकर्षक ढंग से होता है। पथिक को देखकर विरहिणी जब उतावली हो चली तो उसके कटिप्रदेश से रशनावली छूट गई और किनकिनिया किनकिन ध्वनि करती हुई बिखर गई। किसी तरह उन्हें समेट गांठ बांधकर वह बेचारी आगे बढ़ी तो उसकी मोतियों की लड़ ही बिखर गई और उसे संभालते संभालते नूपुरों से चरण उलझ गए और वह गिर पड़ी। इसके बाद भी जब वह अपभ्रंश के साथ लजाती हुई उठी तो उसने देखा कि उसका स्वच्छ श्वेत आंचल ही खिसक गया है और कंचुकी भी मसक गई है। फिर भी अपने हाथों से किसी प्रकार स्तनों को ढककर वह बेचारी पथिक के पास पहुंची। निम्नलिखित छंद में इस उतावली का एक चित्र द्रष्टव्य है। तम जम मिहल ठवई गंठी गिट्ठर सुहय तुडिया ताव थूलावली नवसर हारलिया सा तिवी किवी संवरिवी चैवी किवी संचर्य नेवर चरण विलग्गिवी तह पही पनखुडिय करुणा उत्पन्न करने के लिए ही कवि ने विरहिणी का ये चित्र खींचा है। इसके बाद विरहिणी जब संदेश कथन की भूमिका देती है, उसमें नारी हृदय की परवशता आकुलता और विदग्धता एक साथ मुखरित हो उठी है। प्रिय के पास इससे बढ़कर लगने वाली बात और क्या कही जा सकती है कि गुरुवौ परिहवु की न सहऊ पई पोरिस निलन जिही अंगेही तू विलसिया ते दद्धा विरहिन तुम्हारे जैसे पौरुष संपन्न पति के रहते हुए भी मैं ऐसा प्रभाव कैसे न सहूं। जिन अंगों के साथ तुमने विलास किया है आज वही अंग विरह द्वारा जलाए जा रहे हैं। किसी पुरुष के लिए उसके पौरुष को चुनौती देने से बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि सचमुच ही उसमें पौरुष है तो कम से कम अपने उस प्रतिद्वंद्वी को पराजित एक स्वयंभू छंद 8149 श्री भायानी द्वारा सम शून्य रा शून्य भूमिका प्री शून्य 77 पर उद्धृत पेज नंबर 216 करने के लिए वह अवश्य उठ खड़ा होगा जो उसके द्वारा भोगे हुए अंगों को स्वयं अपना विषय बना रहा है। संदेश कहते कहते विरहिणी इतना रोने लगती है कि पथिक से सहा नहीं जाता। ये देखकर वह कहता है कि हे देवी, किसी प्रकार अपने आंसुओं को रोको और जाते हुए पथिक का अमंगल मत करो। इस पर वह अत्यंत सरल ढंग से कहती है, मई न रुनु विरहगी धूम लोइन सवनु, अर्थात मैं थोड़े ही रो रही हूँ, ये तो विरहाग्नि के धुएं से आंखें सजल हो आई हैं। व्यथा हृदय में सरलता लाती है तो उसकी टीस कभी कभी उतनी ही विदग्धता भी उत्पन्न करती है। प्रिय ने उसका सारा सुख छीन लिया। इस बात को सागर और मंदर के रूपक से विरहिणी इस प्रकार कहती है, महियम रयन्नी महियम गुरु मंदरेन तमने च उन्मूलियम अशेष सुहर्युन कड्डियम च तुह पिम्मे, अर्थात हमारे रत्न निधि हृदय को विरह मंदर ने मथकर तमाम सुख रत्नों को निकाल लिया। शरत ऋतु का वर्णन करते हुए नायिका कहती है कि क्या उस देश में ज्योत्सना का निर्मल चंद्र नहीं उगता, क्या वहां अरविंदों के बीच हंस कल कल ध्वनि नहीं करते, क्या वहां कोई ललित ढंग से प्राकृति काव्य नहीं पढ़ता, क्या वहां कोकिल पंचम स्वर में नहीं गाता, क्या वहां सूर्योदय के कारण खिले हुए कुसुमों से वातावरण महक नहीं उठता। होता तो ये सब होगा, लेकिन लगता है कि प्रिय ही अरसिक है जो इस शरत काल में भी घर का स्मरण नहीं रखता। की तही देस हु फुरई कलरठ न कुनंती हंस जुनी निम्मल चंदह फलसेवी रविंदह। अह अह पायऊ हु पढ़ी कोई सुललिया पुन राइन अह पंचऊ हु कुनी कोई कावालिया भाइन मेहमही अहफ पचचूसी गहू ओ सियु घनु कुसुम भरु। अह मुनियु पहिया अंसियु पियु सरई समई जूना सरई घरु संदेश रास्क को पढ़ते समय यह नहीं मालूम होता है कि किसी अहिंदू की कृति है। इसका कारण ये है कि संदेश रास्क में संस्कृत और प्राकृत काव्यों की अनेक रूढ़ियों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है। सामोर के वर्णन में फल फूल वाले वृक्षों की सूची तथा षडितु वर्णन में कवि समयों और रूढ़ियों का स्पष्टतः पालन किया गया है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं कवि ने संस्कृत के प्रसिद्ध छंदों का अपभ्रंश में अनुवाद करके रख दिया है, जैसे तज्या निवदंत निवसियाई संगमयी जत्थहु हारो। इन्हीं सायर सरिया गिरी तरु दुग्गाय अंतरिया सम शून्य रा शून्य 93 पेज नंबर 217। ये हनुमन नाटक 5125 के इस छंद का अनुवाद है। हारो नारोपितः कष्ठे गया विश्लेषभिरुणा इदानी मंत्रे जाता सरित्सा गर्भूधरा। इन सबसे यही प्रमाणित होता है कि अब्दुल रहमान को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य की परंपरा का बहुत अच्छा ज्ञान था और उन्होंने इस काव्य में अपने अध्ययन अनुभव का निचोड़ रख देने की चेष्टा की। ये समझना भ्रांति है कि यह ग्राम्य अपभ्रंश में लिखा हुआ काव्य है। वस्तुतः इसके भाव और भाषा दोनों पर नागरता को छाप है। छंद विविधता और अलंकार सज्जा होनो ही दृष्टियों से संदेश रास्क अत्यंत परिमार्जित रचना है। नीति सूक्ति अन्योक्ति आदि अपभ्रंश साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग नीति सूक्ति अन्योक्ति स्तुति आदि ढंग के काव्यों से भरा हुआ है। हेम व्याकरण देवसेन 11वीं सदी का सावैधम दोहा सोमप्रभ 12वीं सदी ईस्वी रचित कुमारपाल प्रतिबोध आदि में मार्मिक सूक्तियां अनुभव पूर्ण नीति के दोहे तथा संकेतपूर्ण अन्योक्तियां मिलती हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों से भी सूक्तियों का चयन किया जा सकता है। हेम व्याकरण में ब्रह्म कुंज पपीहा केहरी धवल महाद्रुम आदि को लेकर बड़ी ही हृदयारी अन्योक्तियां कही गई हैं, जैसे धवल बैल संबंधी अन्योक्ति धवल विसुरई साम्य हो गोरुआ भर पिखेवी हूं कि न जुतु दुहू दिसही खंडी द्वनि करेवी। उसी तरह वहीं से यह सूक्ति उद्धृत की जा सकती है। सरेही न सरेही न सर्वरेही न वी उज्जारण वनेही देश रवन होंती बड़ निवसंते ही सुवनेही। गद्य साहित्य यद्यपि अपभ्रंश साहित्य का अधिकांश छंदोबद्ध काव्य है, फिर भी खोज करने से कुछ गद्य की भी रचनाएं मिली हैं तथा क्रमशः मिलती जा रही हैं। उद्योतन सूरी की कुबलमला कहा कि अपभ्रंश गद्य की चर्चा तो बहुत दिनों से होती आ रही है। श्री अगरचंद नाहटा ने इधर परवर्ती अपभ्रंश साहित्य कई गद्य रचनाएं खोज निकाली हैं। 14वीं शताब्दी ईस्वी की एक ऐसी ही रचना षडावश्यक बालवबोध के एक गद्यांश का उद्धरण उन्होंने 1949 के U0P0 हिस्टोरिकल सोसाइटी के जर्नल में दिया था। इन बिखरे उद्धरणों से अपभ्रंश साहित्य में गद्य रचना के प्रयत्नों का प्रमाण मिलता है। अपभ्रंश साहित्य का ऐतिहासिक महत्व स्वयंभू 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर रईधु 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के इस अपभ्रंश साहित्य का संपूर्ण भारतीय साहित्य में बहुत ऐतिहासिक महत्व है। यद्यपि जिस व्यापकता और विशालता के साथ इनका आरंभ हुआ था वह अंत तक न रही बल्कि परवर्ती साहित्य के विषय और शैली में एक प्रकार की जड़ता दिखाई पड़ती है, फिर भी समग्र रूप में ये साहित्य उस युग के जातीय नवोन्मेष पेज नंबर 218 का प्रतिनिधि होकर ऊपर उठा। अपभ्रंश की प्रत्यग्रता का ठीक ठीक अनुभव परवर्ती संस्कृत साहित्य की ह्रासोन्मुख प्रवृत्तियों के परिपार्श्व में ही हो सकता है। अपभ्रंश कालीन संस्कृत साहित्य उस नागर समाज की रूंधी हुई विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है जो अपना ऐतिहासिक कार्य समाप्त कर चुकने पर सामाजिक विकास में बाधक हो रहा था। इस जड़ता से तत्कालीन संस्कृत साहित्य भी ग्रस्त दिखाई पड़ता है। क्या दर्शन, क्या काव्य सर्वत्र पुराने तथ्यों की पुनरावृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। मौलिक उद्भावना की अपेक्षा टीका और व्याख्याओं में रस लिया जा रहा था। प्रमेय दूर था, प्रमाण चर्चा अधिक थी, दार्शनिक दुरूहता नव्य न्याय के वाद विवादों में मुखर हो रही थी। समस्त चिंतन तर्क जाल में उलझा था। संस्कृत काव्य हृदय के सहज उच्छ्वास को छोड़कर पांडित्य प्रदर्शन तथा श्रमसाध्य आलंकारिक चेष्टाओं में लीन था। लक्षण ग्रंथों का बाहुल्य था। रस के मान शब्द शक्तियों से आक्रांत थे। प्रकृति चित्रण नाम परिगणन और अपविधान से बोझिल था। मानव अनुभूतियों की अर्थभूमि संकुचित होकर श्रृंगारिक लीलाओं से पनकिल हो रही थी। राज दरबारों के उजड़े वैभव की बासी पुनरावृत्ति से वस्तु वर्णन धूमिल हो रहा था। चरित्र काव्यों में चरित्रों का व्यक्तित्व बंधे बधाए टाइपों के रूप में ही प्रकट हो रहा था। मुक्तक काव्य कृत्रिम और अलंकृत थे। प्रबंध काव्य आकार में विपुल होते हुए भी जीवन हीन थे। गद्य बोल चाल की भाषा से दूर हटकर समासों का बिहर जंगल हो गया था। सर्वत्र एक प्रकार की जड़ता और निष्प्राणता के दर्शन होते थे। अपभ्रंश साहित्य का उद्भव संस्कृत के इस परिपार्श्व में हुआ। निःसंदेह उस पर भी संस्कृत साहित्य की ह्रासोन्मुखी छाया कहीं कहीं पड़ गई। अपभ्रंश के प्रबंध काव्यों में संस्कृत की कथानक रूढ़ियों काव्य रूढ़ियों तथा वस्तु वर्णन संबंधी रूढ़ियों का पालन कहीं कहीं अवश्य दिखाई पड़ता है। फिर भी इन सबके बीच अपभ्रंश के धार्मिक और ऐहिक काव्य में नए जीवन का उत्साह और आवेग सरलता और सादगी शक्ति और सौंदर्य जीवंतता और प्रत्यग्रता का अनुभव होता है। उसमें लोक कथाओं और लोक गीतों का जीवंत स्पर्श मिलता है। इन सब विशेषताओं का यही कारण है कि जैन विद्वानों और मुनियों बौद्धों सिद्धों और इत्र मत्यानुयायी कवियों द्वारा लिखे जाने पर भी अपभ्रंश साहित्य सामान्य लोक जीवन के गहरे संपर्क में था। वह जिन लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर रहा था उन्हें बहुत दिनों के बाद अपनी देसी भाषा में हृदय की बात कहने का अवसर मिला था। संस्कृत के माध्यम से उस समय उस लोक जीवन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी। पृथ्वी पुत्रों की वह सारी भाव संपदा सीधे अपभ्रंश को ही पहली बार प्राप्त हुई। अपभ्रंश साहित्य की शक्ति का यही रहस्य है। इसी लोक तत्व के द्वारा अपभ्रंश साहित्य ने भारतीय साहित्य में अपना ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया और इसी लोक तत्व से उसमें युग युग तक मानव हृदय को आनंदित करने की शक्ति आई।